कथा और उसमें नाम की महिमा थोड़ा सा इसमें मैं स्पष्ट कर देना आवश्यक समझना कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी का समय था। एक राजा था, उसका नाम था सुबुद्धिमान, सुबुद्धिराज। वो जमींदार टाइप के थे, जमींदार। उनको वर्ष में 1-2 या 4 लाख रुपया राजा को देना होता। राजा था हुसैन शाह बादशाह, उस समय बंगाल का, जिसमें ये अभी राजा नहीं था हुसैन शाह बादशाह, दूसरा कोई राजा था, उसके अधीन सुबुद्धि राजा थी और उनका कर्मचारी ये हुसैन शाह था, समझे। एक मुसलमान कर्मचारी था इनके अधीन, बड़ा हुनहार मुसलमान था वो। उन्होंने उसको खजाना वसूल करने के लिए उसको नियुक्त किया। 4 लाख उस समय का सम रुपया वसूल करके और सब हजम कर गया, बुद्धि राजा को नहीं दिया, सुबुद्धि राजा। उसको कुछ न कुछ देना चाहिए, आधा भी देता था कोई बात नहीं थी, उसने सब हजम कर लिया। उन्होंने उसको बुलाया, अरे तू बड़ा दुष्ट है, तुम्हारे ऊपर हमने विश्वास किया और समस्त राज ये खजाने को मैंने तुम्हारे ऊपर में भार दे दिया, तो तुमने एक पैसा भी मुझको दिया, तू अकेले खा गया। अच्छा देखो, तुमने अपराध किया है कि नहीं, तो अपराध हजूर किया, ठीक, इसका मैं दंड देता हूं, आइंदे से ऐसा कान पकड़ो जो मैं नहीं करूंगा। बस उन्होंने कोड़े मंगाए, घोड़ा वाला कोड़ा, आजकल वो कोड़ा दिखता नहीं, और सपाट से एक कोड़ा मारा यहां से और नीचे तक, एकदम खाल उठ गई एक कोड़े, जाओ, छोड़ दिया। फिर से काम करना, किंतु हमको तुम्हारा जो चौथाई भाग है वो ले लेना और 3 भाग हमको तुम दे देना। कान पकड़ करके उनके सामने स्वीकार करके वो चला गया। कुछ दिनों के बाद में यहाँ की नौकरी छोड़ करके जो इनके ऊपर वाले बादशाह था उसके पास में वो चला गया और धीरे धीरे उनको कत्ल कर और खुद वो राजा बन बैठा, बादशाह होल बंगाल का। अब सुबुद्धि राय उसके अधीन हो गए ना। एक दिन वो स्नान कर रहा था बड़े ठाट के साथ में, बेगम महारानी, बेगम जी उनको स्नान करा रही थी, हजारों लौंडिया दासियां उनके चारों तरफ में पानी स्वर्ण कलश से भरकर सुंदर सुशीतल जल से उसको स्नान करा थी। बेगमा जी ने देखा, अरे तुम्हारे पीठ पर ये ऐसा दाग क्यों देख रही हूं। अरे कोई बात नहीं, वो तो ऐसे ही होता, नहीं आपको बतलाना पड़ेगा क्यों हुआ। अरे ऐसे ही रोग तो होता ही रहता है, कुछ हो गया, ऐसे दाग आ गया, आप यदि नहीं बतलाएंगे तो मैं 20 खान करके अभी मरूंगी। 20 का डब्बा उठा लिया और खाने चली। ये बड़ी मुश्किल है, बतलाना नहीं चाहते थे। अंत में उन्होंने कहा, जी देखो मैं गुमास्ता था महाराज सुबुद्धि राय का, और मैंने सब उनका जितना खजाना था मैंने हड़प लिया, उनको नहीं दिया, उन्होंने मुझको बुला करके थोड़ा सा शासन कर दिया और मुझे क्षमा कर दी, उन्होंने एक कोड़ा मारा था उसी का दाग लिया। अच्छा, यदि उसके प्राण अभी एक दिन के अंदर में अभी तुरंत बुला करके हमारे सामने नहीं निकाल दिया, फांसी नहीं दे दिया, तो मैं फिर अब देखो 20 में लेकर के खा रही हूँ। वैसे ही तो बड़ी गड़बड़ हुई, भाई मैं उसका प्राण नहीं ले सकता, तुम जितना भी करो, तुम मर जाओ, प्राण नहीं लूंगा, तो बदला लेना है तो एक बात कीजिए, उसको अपने बधने का पानी पी करके और उसको पिला दिए जिससे हिंदू धर्म उसका नष्ट हो जाए और मुसलमान होकर के रहे, तब मैं मान सकती हूँ। कहा, ये बात मैं मान सकता हूँ किंतु उसे जान से नहीं मार सकता, मैं उसका ऋणी हूँ। अंत में उनको बुलाया, अब बुला करके खुद बधने का पानी पिया, और उनको जबरदस्ती महाराज आपके प्राण में ले रहा, छोड़ देता हूँ किंतु आपको मुसलमान बन कर करें। हमारी बेगम जी की ऐसी ही इच्छा है। बड़ा दुखी हुआ, मर जाता वो अच्छा था, किंतु आज अपना धर्म मुझको जबरदस्ती इन्होंने पकड़ करके हमारा धर्म नष्ट कर दिया। अब वो वहां से आया लौट करके अपने राजधानी में, और वहां से बनारस आया, बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, हजारों पंडितों को, शास्त्रियों को बुलाया, बड़े बड़े पगड़ी वालों लोगों को बुलाया, सर वेदांताचार्यों को बुलाया, सबको बुला करके पूछा, जी महाराज मैं हिंदू था, मुझको पानी का बधना बधने का पानी पिला, मैं मुसलमान हो गया, और ऐसी कृपा करें कि मैं फिर हिंदू होकर के अपने प्रभु का स्मरण कर सकूं। उन्होंने कहा जी एक बहुत सस्ता तरीका है, 1 किलो घी एकदम जल आग में एकदम खौलता हुआ रहे, और खौलते हुए घी को तुम अपने मुख में, मतलब क्या खौलता हुआ आदमी यदि पिएगा तो मरेगा नहीं। दूसरे ने कहा जैसे एक दूसरा भी उपाय है, लोहे को एकदम ऐसा तरल बना लो आग में तपाकर, जब तरल बन जाएगा तो उसके मुख में तुम अपने ढाल लो, परम पवित्र हो जाएगा। मिथिला में गया, फिर दक्षिण प्रदेश में गया, वो जहां शंकराचार्य जी का स्थान है, वो श्रंगम नहीं, विष्णु कांची, कांची में गया, दक्षिण भारत में, वहां पर बड़े बड़े स्मार्ट ब्राह्मण लोग रहते हैं, बड़े बड़े विद्वान, उनसे पूछा, कहा जी इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, इस जन्म में तुम्हारी शुद्धि नहीं हो सकती। चैतन्य महाप्रभु उस समय में वृंदावन से लौटकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, भाव में भी घोर है, आंखों से आंसुओं की धारा गिर रही है, कभी कृष्ण 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 कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी वहां पर मिले हैं, उसके पहले रूप गोस्वामी मिले हैं, सारी काशी सब उमड़ पड़ी है वहीं पर महाप्रभु जी को दर्शन करने के लिए, बड़ी भीड़ लगी है। 2, 4, 5, 6 दिन तक देखता रहा जे कैसे इनके पास में जाऊं, किसी प्रकार से थोड़ा सा समय पा करके वो झट महाप्रभु के चरणों में गया और उनके चरणों में गिर गया। बोले जी महाराज मैं क्या करूं, मैं मुसलमान हो गया, मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता, ये लोग कहते हैं ये घी गरम करके लोहा गरम करके ले लो तो पवित्र होगा, मैं क्या करूं। महाप्रभु जी ने कहा जी ये पंडित लोग बड़े बड़े पंडित हैं, कभी भागवत नहीं पढ़ा, अजामिल का उपाख्यान नहीं पढ़ा, जो आपको सुनाया ना अभी नहीं सुनाया, अरे भगवान का तो नाम ऐसा है, भूत भविष्य और वर्तमान में जितने भी पाप हैं, जितना पाप भूत काल में किया अभी हो रहे हैं और पीछे भी होंगे, भगवान का एक नाम संकेत पूर्वक भी कर दे तो उसके सब जल करके खाक हो जाते हैं, उसको कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। अजामिल को देखा ना, वाल्मीकि को कितने पाप किए, जगाई मधाई ने कितने पाप किए, कहा एक क्षण में एक अपने बेटे के लिए नाम लिया, भगवान के लिए नाम नहीं, इसको कहते हैं संकेत, संकेत्यं पारिहस्यं, हंसते हुए चिढ़ाते हुए यदि कोई नाम ले। जैसे हमारे गांव में एक बूढ़ा था, गंगा नदी में स्नान करने जाता, जाति का गो, वो लड़कों को देख करके वो चिढ़ा, लड़के इनको चिढ़ाते थे, वो हरे कृष्ण करते, राम राम करते, और वो लठिया लेकर के मारने के लिए दौड़ता उछलता कूदता, कभी लठिया फेंक देता, लड़के ताली बजा करके राम 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 राम, महात्मा जी राम कहो राम कहो, और उतना ही बिगड़ता, किस लिए बिगड़ता, अरे ऐसे ही ये करे, इसको कहते हैं परिहास्यम, हंसी मजाक में भी कोई भगवान का नाम ले। कीर्तन करते हुए ताल स्वर को पूरा करने के लिए रामा हो रामा ऐसा भी कर दिया था, ये ताल पूरा हो गया, कर रहा है और इसको पूरा कर दिया। ऐसे भी भगवान का कोई नाम ले ले, अपनी बछड़ी का नाम रख दिया राधे, अपने कुत्ते का नाम रख दिया कुछ श्याम सुंदर काला कुत्ता, बस इतने में ही हो गया काम तमाम हो गया पाप का। बस एक ही चीज है, वैष्णव को भगवान को के चरणों में अपराध न हो। यदि साधु संतों की और नाम की निंदा की, भगवान की निंदा की, तो लाख बार भगवान का नाम करेंगे वो फल नहीं होगा। और यदि अपराध न हो तो इस प्रकार का नाम किया हुआ वो भी भगवान जगत से उसके पापों से तार देगा। अजामिल ने तो अपने बेटे के लिए लिया, भगवान के लिए नहीं। तभी आई हुई मृत्यु चली गई, वो मरा नहीं। नाम की महिमा जब सुना कहा, अरे हमने पुत्र के लिए नारायण कहा और दम के दूत लौटा दिए गए, उन्हें मार करके विष्णु के दूते ने भगाया। यदि मैं शुद्ध नाम सचमुच में भगवान के लिए लूं तो न जाने क्या हो जाएगा। इसी तरह से तब वो जाकर के हरिद्वार में गया और संसारिक मोह नाता सब छोड़ करके, अब सचमुच में देहाभिमान छोड़ करके, मैं भगवान का दास हूं, कृष्ण ही हमारे प्रभु हैं, और नारायण 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 नाम करने लगा। कुछ दिनों के बाद ही भगवान के वही दूत लोग आए और आ करके उसको बैकुंठ में सीधे ले गए। आप लोगों ने सुना, ऐसे ही आप चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र में देखेंगे। उन्होंने जगत, वो यदि नहीं आते जगत में भगवान का नाम इस प्रकार से प्रचार नहीं होता। आज कलयुग अपने प्रचंड स्थिति में होता, लोग अपनी लड़कियों को तभी बेच रहे हैं, उनको खाते, एक तरह से खाना ही हो जाता। आज जितना चल रहा है राजनीति तो देख ही रहे हैं ना, कैसी राजनीति। आज प्रजाएं भाग रही हैं घर से कर के मारे, रसोई घर में कर, चोटी रखने में भी कर, गले में माला रखने में भी कर। ऐसा कोई चीज नहीं है, जो ठाकुर की दी हुई हवा है उस पर भी आप कर लगाएंगे। गैस पर तो लगा दिया है, पानी पर कर लग गया, ये पंखे चलाएंगे, ये हवा उनके बाप की है ना किसकी है, थोड़ा सा एक पंखा ये लगा दिया और घूम रहा है, बस ये कर उनको दो, कर के मारे सब लोग पिस जाएंगे। अभी पहली संध्या ही नहीं गई, 432,000 में से केवल 5,000 वर्ष और कुछ वर्ष गए, न जाने क्या होगा। किंतु चैतन्य महाप्रभु की यही विशेषता है कि आज नाम जगत में जैसे हो चारों तरफ में उसका प्रचार है। आप लोग गले की माला लगाने में लज्जा बोध करेंगे, करेंगी, तिलक नहीं लगाएंगे। आज पश्चात देशे को लोगों को देखिए, मछली मांस और न जाने क्या खाने वाले वो लोग सब, सिर मुंडन कराकर स्त्री पुरुष बालक बालिका किशोर किशोरी गले में माला दे करके, हमारी भारतीय संस्कृति के कपड़े पहनकर, धोती कुर्ता पहनकर, साड़ी ब्लाउज पहन करके हमारी भारतीय संस्कृति को लेकर के न, और कैसे ठाट से सिंदूर अब करने लगी और तिलक भी उसमें लगाने लगी। हम लोग तो न तो गले में माला देंगे न कुछ करेंगे। अरे नहीं तो अभी तो हरि नाम करो, तो अभी दुर्गा जी का पहले नाम, शंकर जी का लो भाई, गुरु के रूप में उनका लो, कोई भी बात नहीं है, लो आदर सम्मान देते हुए। किंतु कृष्ण ही हमारे आराध्य देव हैं, उनके जैसा अंततः तो बनो, हमारी प्राचीन संस्कृति को तो ग्रहण करो। इसलिए आप लोग डरने की बात नहीं है, कोई भी कुछ आप लोगों को कर नहीं देगा न कुछ दे देगा, हमारी भारतीय संस्कृति का पालन कीजिए। ऐसे ही शुद्ध नाम भगवान का पूजा। कृष्ण इस ब्रज भूमि में आए, क्या क्या लीलाएं उन्होंने की, ब्रह्मा शंकर तक भी उनकी चरण की धूलि को स्पर्श करने के लिए सब समय लालायित रहते हैं। आप लोग उसी भूमि में परम सौभाग्यवान होकर के इस भूमि में आप लोग पधारे हैं, बिना पैसा ही साधु का संग हो रहा है। यहाँ पर जो हरि कथा हो रही है ये पैसे वाली नहीं, बल्कि ये जो आया अभी तुरंत कमरा और ये क्या क्या टीबी कैंसर, लोगों का ये ध्यान आकर्षण कर देगा। भगवान ने यहाँ पर दिया है ना कैसेट, ऐसा बिना मूल्य का कैसा कैसेट दिया है जो कभी ये नष्ट नहीं होने वाला, बिगड़ने वाला नहीं है, सुनो प्रेम के साथ में। वो सब आएंगे, समय ले लेंगे, बर्बाद करेंगे। इसमें भी एक प्रतिष्ठा भरी हुई है, यदि प्रतिष्ठा रहेगी, पीछे से हम लोग दिखाएंगे ओ कितने लोगों की भूड़ हमारी कथा में आई, ये प्रतिष्ठा से बेच जाएगा, लोगों का आकर्षण उधर में चले जाएगा। हम लोग चाहते हैं इसमें एक पैसे का भी खर्च न हो, तुलसी का पत्ता आप लोग ले आएंगी, आप लोगों को दे देंगे, हमारी कथा का आप लोग श्रवण करें, हम अंत में प्रणामी भी नहीं हम लोग चाहते हैं। उस दिन जब कथा समाप्ति होगी एक एक तुलसी का दल आप लोग ले आएंगे, हमें दे देंगे, हम ऐसा चाहते हैं। आजकल कथाओं का सार सब इसीलिए नष्ट हो गया है, आप लोग उन चीजों को ग्रहण करें। अभी बतलाएं ना, जो पुण्य से नहीं होगा, तपस्या से नहीं होगा, जो काम और सब कामों से नहीं होगा, भगवान के एक नाम से सब कुछ हो जाएगा। एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुतो भयम् योगिनां निपनिर्णतम हरि नामानुकूलम्। इस जगत में जो कोई कामना रखते हैं, जो कोई कामना नहीं रखते, जो एकांतिक भक्ति वाले हैं, जो समस्त प्रकार की कामनाओं से भरे पड़े हैं, सब लोगों के लिए बस कलयुग में एक उपाय है, कलयुग केवल नाम धारण है। इसलिए आप लोग इन चीजों को ग्रहण करें, इसी का नाम भागवत है, भागवत और दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग बड़े प्रेम के साथ में नाम का महिमा समझ करके, जो नाम नहीं करते हैं आज से ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम भाव सागर को तरने वाला और कृष्ण प्रेम को देने वाला, इस प्रेम बड़े प्रेम के साथ में ग्रहण कीजिए। और यदि कोई शुद्ध गुरु मिल जाए तो उनसे ये हरिनाम शुद्ध ब्रह्म शब्द ब्रह्म नाम ब्रह्म के रूप में ग्रहण करके करें, और जल्दी फल होगा। कोई संसार की कामना वासना न रखें और भगवान के प्रेम के लिए रोते रहते आंखों से और भगवान का नाम ग्रहण करें, देखिए ये कुछ दिनों में आपका हृदय कैसे एकदम बदल जाता है। कलयुग कहाँ भागेगा, पाप अपराध सब कहाँ भाग जाएंगे, आप लोगों का जीवन कृतार्थ हो जाएगा। गौर प्रमानंदे
नाम की कितनी महिमा है कि स्वयं कृष्ण और राम भी नाम की महिमा नहीं कर सकते। नाम लेत भव सिंधु सुखाई कर्म विचार सुजन मनवाई, उल्टा नाम ते जपत जग जाना बाल नीच भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम
जिसमें से देवता मनुष्य और असुर तीनों झगड़ने लगे कि जिसके पास में रहेगा वो भव सागर से अनाशी तर जाएगा, इसलिए पूरे श्लोक हमको दे दिया जाए। देवता लोग कहने लगे, मनुष्य भी कहने लगे, देवता भी परस्पर असुर लोग झगड़ने लगे। तीनों शंकर जी के पास में गए और बोले, महाराज जी हम लोगों में झगड़ा लग रहा है, कोई शांत कर दीजिए। उन्होंने ठीक है, मैं इसका तीन भाग करके और तीनों को दे देता हूँ। शंकर जी आकर के बैठ गए, उन लोगों को भी बैठाया। उन्होंने 33 लाख श्लोक तीनों को बांट दिया। अब रह गया एक लाख। फिर उसने 33,000 दे दिया, फिर भी बच रहा 1,000। फिर उन्होंने क्या किया, तीन भाग किए, कितना हुआ 330 और 330। फिर भी एक श्लोक बच गया,
10 बचा रहा, 10
क्या
10 बचा रहा,
10 श्लोक नहीं। फिर एक श्लोक बच गया। फिर जब एक श्लोक बच गया तो उन्होंने इसके चार चरण करके एक एक श्लोक दे दिया और एक चरण बच गया। एक चरण में 8 अक्षर होते हैं, इसलिए दो दो अक्षरों को दे दिया तो दो तिहाई 6। अब कितना बच गया, उन्होंने कहा जब मैं अब ये नहीं देता, ये मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए दो नाम रख दिए राम, इसलिए समझो समस्त वेद शास्त्र उपनिषद जितने भी हैं कृष्ण नाम और राम नाम ही सबके सार है। जो नाम कर लिया वो वेद शास्त्र पढ़ लिए, जो नाम नहीं किया उसका भागवत रामायण पुराण वेद वेदांत पढ़ना ब्रह्म ज्ञान इत्यादि बेकार का है। पुल बंध रहा है, रामचंद्र जी का
रावण को मारने के लिए लंका के लिए पुल बना रहे हैं। नल्ली पत्थरों को स्पर्श करके बस राम अंकित नहीं करना है, स्पर्श कर दिया और वो तैरने लगे। पुल करीब करीब बन चुका, थोड़ा सा बाकी रह गया। इतने में रामचंद्र जी ने सोचा, अरे मेरा नाम लेकर के ये पर्वत तैराते हैं, मैं खुद ही एक पत्थर लेकर के डालूं तो बस एक झाड़ी में छिप कर और एक पत्थर उठाया और समुद्र में फेंक दिया और वो डूब गया। हनुमान जी खोजते हुए राम को वहां पर, अरे प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो तुमको कोई और काम नहीं है, हमारे पीछे पीछे लगा रहता है। उन्होंने कहा, जब प्रभु आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सका, आप क्यों छिप करके चले आए, बतलाइए क्या बात है। तो वो तुमसे बतलाने की बात नहीं है, नहीं फिर भी बतलाइए। अरे तुम लोग तो मेरा नाम लेकर के पत्थरों को रखता है, वो पत्थर समुद्र में तैरते हैं पानी में, और मैंने उठाया देखा परीक्षा की, मैंने छोड़ दिया तो वो डूब गया। तो प्रभु इसमें बात क्या है, बात नहीं है, मेरी कितनी बदनामी। उन्होंने कहा, जे प्रभु हम लोग आपका नाम लेकर के भव सागर, ये तो समुद्र है उस पर तैर जाते हैं, किंतु आप अपने हाथों से जिसको छोड़ देंगे वो तो डूबेगा ही। इस चीज को समझिए, इसलिए भगवान के नाम की कितनी महिमा है ना? इसलिए सभी लोग, कलयुग का एक ही नाम है, ये महामंत्र कहलाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस नाम का आप लोग प्रतिदिन सभी लोग सेवन करें, जीव मात्र का प्राणी मात्र का इसमें अधिकार है। तब यदि अनाचार अभिचार सफेद आलू बाजार में सस्ते दिख रहे हैं, उन लोगों से यदि दूर रहें और भगवान का नाम करें, जरूर ही सफल होगा। आग जैसे है, जान में अनजान में छूने से जलाएगी, पानी जान करके छुओ या अनजान में छुओ पानी भी जाएगी। औषधि जान करके खाओ या बिना जान करके खाओ अपना काम करेगी, और भगवान का नाम छीन में काम नहीं करेगा, जरूर करेगा, ऐसा विश्वास लेकर के भगवान का नाम आप लोग करें। विशेष करके जो चित्रकेतु महाराज का उपाख्यान है, इसका सार मैं कल बतलाऊंगा थोड़े से शब्दों में, आज यहीं पर समाप्त होती है। कल इनकी कथा होगी, प्रहलाद महाराज जी का उपाख्यान होगा, खूब ध्यान से सुनेंगे। एक हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी 108 बार इस कथा को श्रवण किया, और यदि भक्ति करने की लालसा है तो प्रहलाद महाराज जी जैसा चरित्र बने, ऐसा सहिष्णु बने, भगवान के नाम में विश्वास हो, सुखा हो। यदि भक्तों का एकमात्र कोई आदर्श उदाहरण है तो किसका है, प्रहलाद महाराज जी का है। इनका कल उपाख्यान सुनाया जाएगा, नृसिंह भगवान का कल आविर्भाव होगा, ये सब कथाएं होंगी। अभी सुरेश चंद्र जी एक जल्दी से कीर्तन कीजिए।
ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। कप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देव प्रणमामि हरि। देवी काकुभर गदगदयाद्य वाचा जाचे निपत्त भुवि दंडवत उद्भटार्ति अस्य प्रसादमबुदस्य जनस्य कृत्वा गंधर्वी के तव गणे गणन अंग श्यामलिन छटाभिरभितो मंदी कृतेंदी वरम जाडं जागुदरोचि संग विदधतंग पट्टंबरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनम हृदि लसद्दामाभिरामोदरम राधा स्कंद निवेशितो जलभुजं ध्यायेम दाम भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमस्तु कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणं गवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णाय तद्भक्ताय यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिम त्वैवास्मि त्वैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणाति ये तो पीछे सराव तो ये तो पीछे भगवान की गुरु और गौरांग की अशेष कृपा से हम लोगों का भागवत तीन दिन निर्विघ्न और सुष्ट रूप से संपन्न हुआ। आज चतुर्थ दिवस है। हम लोगों का कल अजामिल उपाख्यान हरिनाम की महिमा और चित्रकेतु महाराज की कथा ये हुई। चित्रकेतु महाराज के तीन अंश किए जा सकते हैं कथाओं का। चित्रकेतु महाराज जी का पूर्व जीवन, चित्रकेतु महाराज के रूप में लड़का नहीं होने पर दुखी, लड़का उत्पन्न हुआ 5 वर्ष की स्थिति में सुंदर सुकांत लड़के को विष दे दिया, विरह में कातर हो गए, रोने की भी आने लगे, लड़का नहीं होता तो ही अच्छा था, उनके समझ में आया। बाकी रहा अंगिरा और नारद जी ने उसको पूरा किया, लड़के का मोह सदा के लिए छूट गया और नारद जी की कृपा से ये चित्रकेतु महाराज बलदेव जी को उपास्य माना, शंकरसन को, और शंकर जी के गुरु भ्राता बने। ये चित्रकेतु महाराज शंकर जी के गुरु भाई हैं, वो भी राम के उपासक है, ये भी राम के उपासक है। दूसरा खंड वृत्रासुर के रूप में आए और कैसी सुंदर सुंदर स्तुतियां उन्होंने भगवान को की जो दूसरों के लिए असंभव है। इसलिए श्रीमद् भागवत के परिचय देने में उसका लक्षण बतलाया, वृत्रासुर का उपाख्यान जिसमें वर्णित हो वो श्रीमद् भागवत, दूसरी जगह में ये वर्णन नहीं किया गया है। तो इसका कुछ कारण रहा होगा, ऐसे ही नहीं लिख दिया। कारण इसका देखा जाता है, उनकी स्थितियों से समझा जा सकता है। यदि भीष्म पितामह को कृष्ण से युद्ध करने में अपने बाणों से उनके हृदय को छलनी कर दिया और कृष्ण के अंगों से रक्त टपकने लगा, तो उसको भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी व्यक्ति ने, ज्ञानी भक्त ने उसको किस रूप में लिया, उसको किस रूप में लिया, उसको हमारे चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि जी ने उसको व्यक्त किया है। अच्छा, ये जो भीष्म पितामह जी थे उनको कृष्ण की बाल्य लीलाओं को ज्ञान है कि नहीं है, उनको कोई कहा होगा कि नहीं, कृष्ण की जो बाल्य लीला से आरंभ कर रास लीला हुई, यदि हम लोगों को इतना सुयोग है कृष्ण की बाल लीलाओं का, रास लीलाओं का, गोपियों के सहित उनके परस्पर अनुराग और प्रेम और प्रणय का यदि हम लोगों को है, और हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा सा लोभ हो सकता है, हो और ना हो तो दूसरी बात, तो उनको ये लोभ हुआ होगा कि नहीं। अच्छा, लोभ ना हो तो सुना तो होगा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इन सब कथाओं को सुन करके कृष्ण की रास इत्यादि और गोपियों से, गोपों से उनके प्रेम की बात को सुन करके अच्छा ना लगे। ये तो स्वाभाविक है जगत के लोगों के लिए, बल्कि ये भी कहा गया सजोग माया बलम दर्शयिता गही। ऐसी लीलाएं मनोरम उन्होंने की कृष्ण ने कि जगत के लोगों के अनुकूल हो। जगत रूप रस गंध स्पर्श में ही व्यस्त रहता है, इसी में तो रहता है, तो कुछ उन लीलाओं से कृष्ण की लीला की कुछ समता होने से वो उनको बड़ी प्यारी कथाएं लगती हैं। तो भीष्म पितामह जी को ये नहीं होगा जे कृष्ण के साथ में गोपियों का पूर्वानुराग था, कृष्ण ने उनके कपड़े चुरा लिए, उनके मन को कृष्ण ने रंग दिया और उनके साथ में रास इत्यादि किए, उनके घर्म बिंदुओं को पोछा, कृष्ण का मुख भी नोच दिया होगा, यह सब उनको पता नहीं है, इसलिए उसके साथ में तुलना दे करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने उनके मन के भावों को व्यक्त कर दिया जगत के सामने। हमारे सनातन गोस्वामी ने भी व्यक्त किया, नहीं तो ये सब अर्थ प्रकाशित नहीं होते। चित्रकेतु महाराज जी जब राजा थे उनकी आयु हजार वर्षों की, लाखों वर्ष की, और जब मुक्त हो गए और जब शंकर जी से उनका बंधुत्व हो गया, जबकि उनके सखा बन गए और उनके सब पैरेलल लाइन में बैठने उठने लगे, शंकर जी उनका सम्मान करते हैं, पार्वती जी ने जब उनको अभिसंपाद दिया तो शंकर ने कहा अरे सुश्रोणी, अपने के रूप के में अभिमान में मत्त होकर के तुमने इस महापुरुष को नहीं पहचाना, इनको तो तुमने अभी संपाद दे दिया, इनके मुख पर मुस्कुराहट नाच रही है? और ये चाहते जे कहते जे नहीं, ये अभी संपाद तुमको लौट जाए, लौट जाता कि नहीं, या पलटे तुम भी जाओ पाषाणी हो जाओ, कह देते आसुरी जोनी में चले जाओ तो क्या होता, जरूर चली जाती, ऐसे वो महात्मा। किंतु उन्होंने कहा जे एव मस्तु, स्वर्ग और नर्क मेरे लिए सर्वत्र बराबर है, हमको भगवान की कथाएं चाहिए, भगवान की लीला की स्फूर्ति होती रहे, बस मुझको यही चाहिए। ठीक, लोगों को शिक्षा भी होनी चाहिए, उदंडता साधु संतों से ना करें और किसी की निंदा इत्यादि ना करें, विषयी लोगों की प्रशंसा भी ना करें, ये सब हम लोगों का आदर्श होना चाहिए। इसलिए चित्रकेतु महाराज जी मुक्त पुरुष हैं, मुक्त पुरुष होने पर वो जो लीला दिखलाई अभी संपाद ग्रहण करने की, वो जीव शिक्षा के लिए, कभी भी उनको मत समझना जो उनका पतन हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में अपराध किया, यदि ऐसा मान लेंगे तो गोपियों ने कृष्ण के चरणों में जरूर अपराध किया, जिनको चोर कह रही हैं, उन्होंने तो चोर नहीं कहा, उन्होंने कहा लंपट, लबा, धूर्त, ये सब तो प्रयोग नहीं उन्होंने किया, किंतु गोपियों ने सब, यहां तक कि यशोदा जी ने उसके हाथ बांध दिए, चोर घर घर में चोरी करता है, गोपियों ने कहा अच्छा देखो तुमने ये जो दोष किए हैं वो हमारे चरणों की पूजा करो, अपने हमारे चरणों को सिर पर रखो तो तुम्हारा सब दूर हो जाएगा। तो कृष्ण ने सचमुच में उनके चरणों को यहाँ पर तो बतलाओ तो इनका तो अपराध से तो ये कृष्ण मरेंगे, गोपियाँ मरेंगी तो इनका नरक में भी तो जगह नहीं मिलेगी। किंतु कृष्ण नरक में क्या अपने हृदय में स्थान दे दिया, कभी उसे बाहर नहीं किया। ब्रह्मा की स्तुतियों को उपेक्षा करते हैं, नहीं देखते, और गोपियों की ऐसी सब उल्टी टेढ़ी तिरछी बातों सुनने के लिए सब समय लालायित रहते हैं, इतनी प्रेमी। तो यह चित्रकेतु को शंकर जी की सभा में और नारद ऋषि और इनके संग में कभी भी इनको सुनने का सुयोग नहीं मिला होगा। इसके बाद तो फिर असुर बने हैं ये महापुरुष, असुर बनने पर भी उनका हृदय क्या असुर हो गया होगा? वो तो उन्होंने इसलिए ग्रहण किया कि जगत के लोग सीखें जिनको इंद्र को जो संभव नहीं है। इंद्र ने कभी भी भगवान की भक्ति उनकी नहीं मांगी, उन्हें प्रभो आप प्रसन्न हो, आप हमारे राज्य की रक्षा करें, बस इतना ही है। उनके चरणों में ऐसा प्रेमा भक्ति, ब्रज का मैं कुछ हो जाऊं ऐसी कोई भक्ति नहीं मांगी। इसलिए चित्रकेतु महाराज जी जो स्तव कर रहे हैं उसके देखने से ही ऐसा प्रतीत होता है ये साधारण नहीं, बल्कि इनका लक्ष्य क्या है? नाम नहीं लिया, जैसे राधिका जी का नाम श्रीमद् भागवत में नहीं है उसी प्रकार से उन्होंने नाम नहीं लिया, किंतु जो कुछ था सब व्यक्त कर दिया इन्हीं चार श्लोकों में, जो भारत का दिव्यमान प्रदीप के समान ये श्लोक है। जो समझेगा वो समझेगा, नहीं समझेंगे तो दुर्भागा है। पहले श्लोक में कहा क्या? अहं हरे तौ पादैक मूल दासानुदासो भविताश्म भूय मनस्मरे तासु अशुपते गुणानं गृणीत कर्म करोतु काय। पहले श्लोक में ही बहुत सुंदर उन्होंने कहा तौ पादैक मूल, भगवान को प्राप्त करने के लिए बिना साधु संग के, वो भी वैसे उत्तम महाभागवतों की कृपा के बिना भगवान को नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा और नहीं पाया जाएगा, इस चीज को समझो। सुग्रीव इत्यादि को भगवान मिले हनुमान जी की कृपा से, प्रहलाद को ध्रुव को भगवान मिले किसके द्वारा? नारद जी जैसे महाभागवत। बिना भक्तों की कृपा से कोई भी आज तक भगवान को नहीं पाया और न पाएगा, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं। यहाँ तक कि खग मृग जटायु जैसे लोग, गिद्ध जैसे लोग, अजामिल जैसे लोग, दुराचारी वाल्मीकि जैसे लोग, ये सब कैसे पाए? नारद जी के कृपा से या और भक्तों की कृपा से किसी ने पाया? हनुमान जी की कृपा से राम को, बिना भगवत कृपा। इसलिए कहते हैं अहं हरे तौ पादैक मूल दासानुदासो भविताश्मि, मैं कोटि कोटि जन्मों तक जब तक मेरा जन्म होता रहे मैं पुनः पुनः आपके चरणों के जो दास के दासों के अनुदास हैं, मैं उनके दासों का अनुदास हो सकूं, उनकी चरणों की मैं धूली बन सकूं और उनके अनुगत्य में मेरी वाणी सब समय आपके गुणा का अनुवाद करता रहे और हृदय और मन सब समय आपकी उसी प्रेममय लीलाओं का स्मरण करते रहे और शरीर काय मैंने क्या करे, भगवान की उन जिल लीलाओं का स्मरण कर रहा हूं और वाणी जिसका कीर्तन कर रही है उन्हीं लीलाओं के अनुसार में मैं आपकी मैं सेवा कर सकूं। अब बाकी क्या रह गया? तन मन वचन, तीन ही तो मनुष्यों को है, जीवों को है, इसलिए तीनों को आपकी सेवा में लगा सकूं, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं चाहता। उन्होंने कहा प्रभु ने देखा जा रही ये तो बड़ी सुंदर प्रस्ताव, हमारी स्तुति स्तव कर रहा है, बस झट उसी युद्ध में इंद्र को नहीं दिखाई पड़ा और उनको दर्शन दिए, बोले जे परम ब्रूही परम ब्रूही परम ब्रूही, मांग लो जो कुछ तुमको मांगना है। मैंने कहा जी अच्छा, पृथ्वी का एक छत्र राज्य ले लो, इंद्र पद तुमको दे देता हूं। नहीं लूंगा। अच्छा ब्रह्म पदवी दे देता हूं, यह विश्व की सृष्टि संघार ये सब का तुम्हारे अंदर में रहेगा और तुम्हारे चार सिर हो जाएंगे और तुम सबके पितामह बन जाओगे, विराट ऐश्वर्य हो जाएगा। अच्छा एक बात करो, संसार में सबसे बड़ी दुर्लभ है मुक्ति, आवागमन को पार कर जाना। प्रभु ये तो नरक के समान, हमको ये नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर अपुनर्भवंगा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। विरहय्य कांक्षे में तुम्हारी सेवा को छोड़ करके, विरह माने सेवा, तुम्हारी सेवा को छोड़ करके, अपने अंगों के द्वारा तुम्हारी सेवा छोड़ करके और तुम्हारे भक्तों की सेवा करके छोड़ करके और हृदय और मन के द्वारा तुम्हारी इन लीला कथाओं का चिंतन करना छोड़ करके, वाणी के द्वारा तुम्हारा गुणानुवाद छोड़ करके, ये तात्पर्य विरहय्य कांक्षे। मैं दूसरी कुछ भी न स्वर्ग न ब्रह्मपद न इंद्रपद न रसातल का वो पद जहाँ पर कि बलि महाराज बड़े आनंद के साथ में उनके वामन देव की पूजा करता, वो उसकी भी मुझे लालसा नहीं है। और क्या और इत्यादि समझ लो, बैकुंठ की भी नहीं, और भी मुक्त प्रग्रह वृत्ति से और ऊपर चले जाओ, मुझको ये जरूरत नहीं है। क्या चाहते हो तब ठीक से करके बोलो। ये प्रभु मैं ये चाहता हूं, ये आपसे जो पहले तीन बार मांगा तन मन और वचन वाला, अब मैं आपको बतलाता हूं ये तन से कैसे मन से कैसे और वचन से कैसे मैं आपकी सेवा कर सकूं। सबसे पहले मन से, मन से कैसे आपकी सेवा करूं, कैसे सब समय स्मरण करता रहूं, इसके लिए बतला रहे हैं क्या। अजात पक्षाय मातरम खगा स्तन्ने यथा बच्चतर क्षुधारता प्रियः प्रियेव विशुतम विषन्ना मनोरबिंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। अजात पक्षाय मातरम खगा, जिस प्रकार से एक प्रकार का ये जो चिड़िया होती है पक्षी, जिसके अभी डैने नहीं हुए हैं, अभी अंडे से अभी निकले हैं, एक साथ में चार पांच हैं, एक साथ में बैठे हुए हैं, आंखें अभी थोड़ी थोड़ी निकली है, डैने अभी नहीं निकले, कुल बुल कर रहे। मैया चली गई दाना चुंगने के लिए और वहां से कीड़े मकोड़े ये जो मिल जाएंगे अपने मुख में उसे रगड़ कर मुलायम करके उसे लंबी चौड़ी कर देंगी और जब आएंगी तो बच्चे फुदकने लगेंगे, ऐसे ऐसे अभी तो पंख तो हवा नहीं, फुदकने लगे। अब वही जब गई वो बाहर में दाना चुंगने के लिए लाने के लिए, अब बच्चे भैया कहाँ गई, भैया कहाँ गई, चैन नहीं, मैया की चिंता कर रहे हैं किस लिए। पहले तो इसको डर है उल्लू कहीं ना खा जाए, कौवे आकर के और उन्हें खा न जाए, कोई शिकारी न पकड़ ले। प्रत्येक मनुष्य को यह भय लगा हुआ है, जीव मात्र को यह भय लगा है, विशेष करके मृत्यु से सबको भय है, इसलिए उसको भय है कि मैया तो चली गई, अभी उल्लू बाज और दूसरे पक्षी इसकी टोह में होंगे। ये बादुड़ होते हैं ना, ये भी बड़े तेज होते हैं, ये बाज होते हैं, ये उल्लू होते हैं, रात में चले जाएंगे और जब सोए रहेंगे पक्षी उनको पकड़ करके खा जाएंगे, तो इसलिए उनको डर है, इसलिए मैया जल्दी से आ जाए। पत्ता खड़खड़ मैया आई, मैया आई, कोई शब्द सुना मैया आई, झट मैया के चिंतन में तन्मय रहते हैं। और जहां मैया आ गई डर भी दूर हो गया, और मैया ने उसके फुदकते हुए मुख में थोड़ा सा दे दिया, बस एकदम शांत हो गई, बैठ गई। ऐसे ही मैं भगवान का सब समय चिंतन करूं, भगवान के आने से क्या होगा, मृत्यु का भय, रोग का भय, सब प्रकार के भय, जन्म जन्मांतरों का भय, ये दूर हो जाएगा भगवान के दर्शन से, और होगा क्या, हमारी मनोकामनाएं समस्त पूर्ण हो जाएंगी प्रभु, इसलिए मैं सब समय आसमान। किंतु हृदय में ये भाव आया, इसमें तो कुछ कामना रही, ये तो भक्ति हुई नहीं। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यना व्रतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ये तो भक्ति ही नहीं, उत्तमा भक्ति बहुत दूर की बात है। जिस भक्ति में कोई सी कामना हो, देही पुत्रम देही, सुंदरम पति देही, सुंदरी भार्यांग देही, प्रचुर धनम देही, मुक्तिं देही, तो ये क्या हो गया, बिक गई भक्ति। और भक्ति एक घड़े दूध में थोड़ा सा सूरा, सूरा माने मदिरा डाल दिया, बस खत्म। ऐसे भक्ति देवी बड़ी कोमला है, यदि अपने लिए कोई थोड़ी सी भी काम ना करे तो वो शुद्ध भक्ति न रह करके अब प्रेम नहीं देगी, वो संसारिक जो तुमने चाहा वो दे देगी, क्योंकि वो तो कल्प वृक्ष है, जरूर दे देगी। इसलिए खबरदार, किसी प्रकार की कोई जागतिक कामना या पारलौकिक भी, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी भावना न रहे ना। अरे इसमें तो डर की बात, और दूसरी बात